नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को EPFO वेतन सीमा संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स 12 जनवरी को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी, हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या और एक महिला के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म। ईरान में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का 10वां दिन, अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी, अगर हिंसा बढ़ती है तो वो प्रदर्शनकारियों का समर्थन करेंगे। और बैडमिंटन में ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु आज से कुआलालंपुर में शुरू हो रहे मलेशिया ओपन 2026 में वापसी को तैयार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की भूमिका शीर्षक के CSR सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य बच्चों में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए सहयोगात्मक, नवोन्मेषी और सतत रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने किया है। सम्मेलन के दौरान श्री शाह छत्तीसगढ़ के सेल भिलाई इस्पात संयंत्र की CSR पहल के अंतर्गत गिफ्ट मिल कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इस पहल से भिलाई इस्पात संयंत्र के खनन क्षेत्रों में स्थित सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 4000 बच्चे लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत NDDB द्वारा छत्तीसगढ़ मिल्क फेडरेशन के जरिए विटामिन ए और डी से भरपूर दूध की आपूर्ति की जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहकारिता मंत्री IDBI की CSR पहल के अंतर्गत शिशु संजीवनी कार्यक्रम का भी शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले लगभग 3000 बच्चों को पोषण प्रदान करेगा। संजीवनी NDDB द्वारा विकसित एक ऊर्जा से भरपूर अर्ध ठोस रेडी टू ईट पौष्टिक पूरक आहार है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित रहेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO को कर्मचारी भविष्य निधि योजना EPFS के तहत वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पिछले 11 वर्षों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट।
न्यायमूर्ति J.K. माहेश्वरी और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में कहा गया था कि वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं होने के कारण श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग EPFO के दायरे से बाहर रह गया है। EPFS एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अधिवक्ता प्रणव सचदेवा और नेहा राठी द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया कि प्रतिमाह 15,000 रुपए की मौजूदा वेतन सीमा मनमानी और तर्कहीन है और विशेषज्ञ निकायों तथा संसदीय समितियों की बार बार की सिफारिशों के बावजूद इसका मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग राज्य में जारी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद आज उत्तर प्रदेश की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। मसौदा मतदाता सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि नावेदारी और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। इस नोटिस चरण के दौरान 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियों पर निर्णय लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च 2026 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी गणना पत्र प्राप्त हो गए हैं और उनका डिजिटीकरण भी कर दिया गया है। संशोधित समय सारणी के अनुसार उत्तर प्रदेश में मसौदा मतदाता सूची आज प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद नागरिकों को एक महीने में दावे और आपत्तियां जमा करने होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवालयों में अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ ही सभी जिलों में 30 जनवरी तक आईटी उपकरणों की खरीद पूरी करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इन पुस्तकालयों के लिए फर्नीचर की खरीद 26 जनवरी तक पूरी करने के प्रयास जारी हैं और उसके बाद डिजिटल पुस्तकालय पूरी तरह से संचालन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक रिपोर्ट।
पंचायती राज निदेशक अमित कुमार सिंह ने बताया कि डिजिटल पुस्तकालयों में वाईफाई, एलईडी स्क्रीन, सीसीटीवी कैमरे, कंप्यूटर सिस्टम के साथ ही पुस्तकों और डिजिटल शिक्षण संसाधनों का समृद्ध संग्रह उपलब्ध होगा। ई पुस्तकों, वीडियो और ऑडियो व्याख्यानों, प्रश्नोत्तरी और डिजिटल शैक्षिक सामग्री के विशाल भंडार के माध्यम से छात्र अपने गाँव में रहते हुए उच्च गुणवत्ता वाली तैयारी कर सकेंगे। प्रत्येक लाइब्रेरी पर करीब 4 लाख रुपए खर्च होंगे। इनमें 2 लाख रुपए की पुस्तक, 1,30,000 रुपए के आईटी उपकरण और 70,000 रुपए के आधुनिक फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों की ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव लाइब्रेरी का प्रबंधन करेंगे जबकि सहायक अधिकारी इसकी नियमित निगरानी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ ही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति ने केंद्र, राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों को एकल डिजिटल मंच पर लाकर सहकारी संघवाद का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही को तय करने में मदद मिली है। ये सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधारों का भी माध्यम साबित हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज मिशन अमृत सरोवर पर नजर डालते हैं जिसका उद्देश्य देश में जलाशयों का निर्माण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है।
मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत साल 2022 में की गई थी जिसका उद्देश्य देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना था। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होती है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। इस डिजिटल मंच पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुड़े ताकि जमीन की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और फंड जारी करने जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव रोहिणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से की गई समीक्षा से सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत हुआ है।
प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, रूल ऑफ नेशन की बात करते हैं, उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय सबके बीच में बढ़ जाता है।
इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इन जलाशयों के पास 23 लाख से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का प्रभावी समाधान बन गया है और सिंचाई को नया आधार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्ट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 12 और 13 जनवरी को भारत यात्रा पर आएंगे। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस यात्रा के दौरान वो अहमदाबाद और बेंगलुरु जाएंगे। प्रधानमंत्री 12 जनवरी को अहमदाबाद में चांसलर मेर्ट्स का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मेर्ट्स व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ईरान में पिछले 3 वर्षों में अब सर्वाधिक विद्रोह देखा जा रहा है। देश भर में जारी इस विरोध प्रदर्शन को आज 10 दिन हो चुके हैं। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हिंसा बढ़ने पर वो प्रदर्शनकारियों का साथ दे सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वे हाल के घटनाक्रम को देखते हुए अगली सूचना तक ईरान की गैर जरूरी यात्रा से बचें। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शन वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। बैडमिंटन में दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु आज कुआलालंपुर के स्टेडियम एक्सियाटा एरेना में आयोजित मलेशिया ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलेंगी। सीजन का ये पहला टूर्नामेंट सिंधु के लिए चोटों से प्रभावित 2025 अभियान के बाद एक नई शुरुआत का प्रतीक रहेगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और बिहार में बहुत घने कोहरे की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में हिमालय के निचले क्षेत्रों, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भागों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के अखबारों की सुर्खियों के साथ हैं हमारी सहयोगी सरफिरोजी।
धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित होने वाले सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर जो खबरें सबसे ऊपर छाई दिखती हैं, उनमें दिल्ली दंगा मामले के आरोपियों को जमानत न देने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, उत्तर भारत में जारी शीतलहर और वेनेजुएला का घटनाक्रम प्रमुख है। नवभारत टाइम्स की पहली सुर्खी है, उमर और शर्जिल को नहीं मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन पर पहली नजर में मामला बनता है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, उमर खालिद व शर्जिल को जमानत देने से सुप्रीम इनकार। देशबंधु ने इस मामले का विवरण विस्तार से प्रकाशित करते हुए खबर को उपशीर्षक दिया है।
धन्यवाद सरफिरोजी। बांग्लादेश में सोमवार की शाम जसोर के मोनिरामपुर उप जिले में अज्ञात हमलावरों ने सरेआम एक हिंदू व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं बांग्लादेश के झेनाइदाह जिले के कालीगंज उप जिले में एक हिंदू महिला ने आरोप लगाया कि पेड़ से बांधकर बुरी तरह प्रताड़ित करने के बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग आज उत्तर प्रदेश की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित करेगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेयर्स 12 जनवरी को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।